ये अच्छा है ये बुरा है। अतः कभी कभी ये ना चीज याद करके बस अच्छा सुंदर देखा, भीतर से सुंदर है कि नहीं ये नहीं देखा, वो तो बुद्धि विवेचना करेगी ये अच्छा है कि बुरा है क्या है। मन तो देखता ही लपक जाता है, उसमें सट जाता है, जैसे घूंट से चिपका देते हैं उन विषयों में, बुरा है कि अच्छा है ये सब विचार नहीं करता। किंतु मेरा मन क्या है, मोर मन वृंदावन, हमारा मन और हृदय एक है। हृदय किसको कहते हैं, हृदय कहते हैं जहां पर कि कृष्ण की भक्ति विराजमान है, प्रेम रहता है। यहाँ पर मस्तिष्क में बुद्धि, विचार, दर्शन, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, और यहाँ पर रहता है प्रेम, प्रेम का हृदय स्थान है। तो हमारा हृदय ही, मन ही हृदय है। हम लोग शुष्क ज्ञान इत्यादि नहीं चाहते, प्रेम से भरा हुआ हमारा हृदय है। इसलिए आप एक और विचार कीजिए, मोर मन वृंदावन, मेरा मन क्या है, वृंदावन और मेरा मन एक है। जैसे योगियों के हृदय में, मन में आप अपने चरण कमल को उदित करते हैं और उनका भाव व्याधि दूर हो जाता है, ऐसे हमारा जो विरह रूपी जो सागर है उसमें जो डूबी हुई है, यदि मेरा मन तो वृंदावन, इसलिए वृंदावन में अपने साक्षात चरणों को उदित कर रहा था, तो वृंदावन में हमारे साथ में चले और वहां पर हम आपके चरणों की सेवा कर सकें, तब हम लोग सुखी हो सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ पर तो मैं वही हूँ, आप वही नहीं हैं। यहाँ पर 16,108 रानियां, माता पिता, हाथी, घोड़े, सैन्य, सामंत, सेनापति इत्यादि, इस भीड़ में हमारा प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम कैसा होना चाहिए, कितना मिनट हुआ,
50 मिनट
हो गया, 2 मिनट में 50 मिनट निकल गए। कह रहे हैं देखो, वृंदावन आपके लिए, आप वही हैं, मैं वही हूं, और महाप्रभु उसी समय में रथ यात्रा में एक श्लोक पाठ किया, मैं वही हूं प्रेमी, नहीं प्रेमिका, नायिका, और कृष्ण वही वो है, प्रेमी या नायक, दोनों में प्रेम भी है, किंतु मेरा मन यहां नहीं लगता यहां। अब वही आज हमारा विवाह हो गया है, अब हम लोग पति और पत्नी के रूप में यहां पर मिले हैं। काव्य प्रकाश का ये श्लोक है, हमें उस दिन की याद आती है जब हमारी शादियां नहीं हुई थी, और उस समय में बेत के वन के पास ही में एक कदम का बड़ा भारी पेड़ था, बिग बगीचा, उसमें सुंदर मधुर सुगंध आ रही, और उसमें एक नदी है, रेवा नदी, रेवा तट, रेवा का तट, और उसमें रेवा नदी के तट पर सुंदर निर्जन उपवन में एक कुंज में हम लोग मिले। उस समय में हम लोगों का प्रेम एकदम निश्चल था, बधा हुआ नहीं। उसमें हम लोगों का जो मिलन और स्वच्छंद गति से प्रेम का आदान प्रदान जो था, यहाँ पर संभव हो सकता है, वही आप हैं, वही मैं हूं, किंतु यहां हाथी, घोड़े और ये सब, ये संभव। उसी को रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के भाव को दूसरा कोई नहीं समझा, एक राय स्वरूप नाम और दूसरा नहीं, समझ रही है कुछ कुछ। तो कहेंगे से यदि जाना है तो वृंदावन में हमको, उनको आपको चलना पड़ेगा, वही आप कृष्ण हैं, मैं वही हूं, यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है और हजारों स्त्रियां हैं, बलदेव जी हैं, सुभद्रा जी हैं, और कौन कौन यहाँ पर हाथी, घोड़े, ये सब कितने मिलने वाले, भीष्म पितामह इत्यादि हैं, यहाँ पर हम लोगों का मिलन हो सकता है, सब देखा बस वही, अधिक बातें नहीं। हम यही चाहते हैं कि आप उसी वृंदावन में से ही तो परानाथ पाई रहो, अब वही आपको हम लोग लेकर के चलना चाहते हैं। भक्त ऐसे ही भगवान को छोड़ करके लाखों जन्मों से छोड़ करके इधर उधर भटक रहा है, और कभी देवता, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी बैल घोड़ी, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ, कभी सुखी कभी दुखी, कभी देव कभी दैत्य, कभी राजा कखनो प्रजा, हे रूप संसार भ्रमिते कोनो जीव, साधु गुरु प्रसाद पाए भक्ति लड़ा। कोटि कोटि जन्मों के बाद में साधु गुरु यदि मिलते हैं निष्पाप प्रेम से, उसके अंदर में हृदय में थोड़ी सी खाद और पानी डाल करके सरस कर देते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करते हैं और उसमें बीज डालते हैं, किस चीज का, प्रेम का बीज, समझ में, हम उस समय नहीं जानते थे या इस समय नहीं समझ रहे, किंतु किस रूप में वो डालते हैं, ये बीज क्या है, ये श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा के रूप में पीछे पैदा होगी,
अभी तो बीज है,
बीज क्या चीज है, बीज में ये नहीं देखा जाएगा जो पेड़ है, पौधा है, फूल है, फल है, पत्ते हैं, ये सब नहीं दिखाई पड़ता, अव्यक्त अवस्था होती है वहां पर केवल एक पोटेंसी रहती है, किंतु है क्या, कृष्ण सेवा की वासना रूपी बीज उसमें किसी प्रकार से सुख दिखा दे, अच्छा देखो तो ये ठाकुर जी की सेवा करो, ये करो, चलो ठाकुर जी का दर्शन कराएं, ठाकुर जी की केवल दर्शन करने से नहीं सेवा करने से होगी, ये कृष्ण के प्रति सेवा की वासना उसमें जो डालते हैं ये है बीज, यही बढ़ करके पहले श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, और उसके बाद में स्नेह, मान इत्यादि बनता है। ये जो गुरु जी ने या वैष्णवों ने, संतों ने जो कृष्ण सेवा की वासना दी है, इसमें पानी देना चाहिए, खाद भी डालना होगा, तब ये बढ़ेगी, अभी अनर्थ भरे पड़े हैं, अनर्थ माने क्या, अपने सुख की वासना, अपनी प्रतिष्ठा, सबसे अधिक प्रतिष्ठा, ये सब अनर्थ है, और अधिक है नम अपराध, वैष्णव के अपराध, गुरु के प्रति अपराध, कभी कभी जानबूझ करके और कभी कभी अनजान में ही हो जाता है, समझ नहीं पाता, ये सब दूर होने पर ये जो कृष्ण सेवा करने की जो वासना है, समझ रही है, सेवा करने की वासना, जैसे आपकी सास ने या ससुर ने या इन्हों ने का, जैसे यहाँ पर वृंदावन के लिए एक ठाकुर जी का पोशाक बनाना, ये सेवा है, अपने लिए तो नहीं करनी, ये सेवा की बात, फूल लगाया ठाकुर जी को जा रहा, ऐसी सेवा की वासना करते हैं यहाँ पर दिन, यही वासना बढ़ते बढ़ते कहाँ ले जाएगी, उसके स्वरूप को वृंदावन में ले जाकर के कृष्ण की सेवा डायरेक्ट मिला, ऐसी ये वासना है, तो अभी वासना हमारी अभी कोमल है, नष्ट भी हो सकती है दो संग में, यदि ऐसा पानी न मिले, हरि कथा न मिले तो क्या होगा, धीरे 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 ये जो बड़ी हुई है कृष्ण को सेवा करेंगे, ये वासना जो है ये सब धीरे धीरे सब अपने भोग की याद आएगी, कर्म करेंगे, दूसरों को खुश करेंगे, बस इसी में चला जाएगा कृष्ण जो थी, जैसे बचपन में तुम लोगों को याद है मास्टर साहब आते थे तो वो बरहा पीड़म नट वर बहु कराते थे ना, हम लोग जाते थे, ये बीज पड़ा, ये जहां जहां गए तुम लोगों को ले गए, इन्हीं की वजह से विशेष करके सब लोगों से परिचय, तो कृष्ण की सेवा करने की एक वासना पैदा, यही मान लिया कि जी विवाह शादी हो गया और तुम लोगों का परिवार ऐसा नहीं रहा, और वो लोग यदि दैत्य दानव हुए तो कहेंगे अरे ये समझ करो हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, प्याज लहसुन ला करके ला दिया, तो क्या होगा धीरे धीरे वासना वो खत्म भी हो सकती, किंतु सौभाग्य जीव जीव यदि रहे तो कृष्ण उसकी व्यवस्था करते हैं, ऐसी व्यवस्था करेंगे ये वासना और बढ़ती है, इस वासना को अपनी संपत्ति बना करके रखना हृदय में छिपा करके, और इसको बढ़ाने की चेष्टा करना जहां भी हो, ये वासना चल यही तक नहीं सीमित रहे, कृष्ण के चरणों की सेवा, चरणों की सेवा हनुमान जी करते हैं ना, स्वप्न सवेरा हो गया सवेरा हो गई इसको संभाल करके रखेंगे तो सेवा की बात ये पढ़नी चाहिए। संसार तो जाएगा ही कुछ दिनों के बाद में, ये रहेगा नहीं, इसलिए इस संपत्ति को दुर्लभ मान करके किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखना और इसको बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। भरसा यही विशेष सेवा की बुद्धि होती है और माधुर्य से होता है अनुकूल्य भाव। अनुकूल्य भाव माने क्या है? अनुकूल्य भाव माने होता है इनकी प्रीति की भाव से सेवा करने की भावना। प्रीति सेवा एक चीज है, प्रीति एक चीज है। यदि सेवा हो रही है और अनुकूल भाव नहीं है तो क्या होगा? भक्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आता। यदि कोई सेवा कर रहा है, सेवा कहते हैं किसी को, किसी से यदि कोई प्रसन्न हो जाता है उस क्रिया का नाम सेवा है। चारुण मुष्टि कृष्ण से लड़ रहा है और कृष्ण को आनंद हो रहा है ये तो कृष्ण की सेवा हो गई, किंतु प्रतिकूल होने से इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये सेवा प्रतिकूल रहने से, अर्थात सेवा किसको कहते हैं? कायिकी, वाचिकी और मानसिक क्रिया का नाम सेवा है, क्रिया है। मन से, तन से, वचन से यदि किसी के प्रति कोई क्रिया होती है तो ये चेष्टा हुई। ये तीनों चेष्टाएं होने पर भी यदि कृष्ण को रुचिकर भी है तो भी जो कर रहा है उसके अंदर में प्रतिकूल भाव है, अतः कृष्ण को मारने के लिए। इसलिए चारण मुस्तिक इत्यादि का यह जो कायिकी, वाचिकी और मानसिक व्यवस्था है, सेवा तो हो गई किंतु प्रतिकूल भाव होने की वजह से यह भक्ति नहीं चाहिए। और ऊपर से देखने वाली क्रियाएं यदि प्रतिकूल सी भी लगती हैं किंतु जो कर रहा है उसके अंदर में ये सुदामा जी ने आज कृष्ण को दांव में लगा कर नीचे गिरा दिया और उसके पीठ पर चढ़ करके यहाँ धूली लगा करके ऐसे ऐसे रगड़ लिया। बोले जी अब बेटा कहाँ जाएगा बतलाओ, और कहा जी अब तुमको हमारी पारी देनी पड़ेगी, जैसे हम तुमको वहां तक ले गए थे अब तुम हमको अपने कंधे पर बैठा करके ले जाओ। और उसके कंधे पर बैठ करके दुल-दुल करते हुए घोड़ा जैसा उनको, ये देखने में मालूम पड़ता है ये कृष्ण से ही सेवा ले रहे हैं, किंतु नहीं, इसी से कृष्ण की प्रसन्नता। यशोदा मैया उनको बांध रही हैं, रुला रही हैं, कृष्ण रो रहे हैं, तन का स्तन से मुख छुड़ा दिया और दूध को बचाने के लिए गई, तो इसमें भक्ति जैसी सेवा वृत्ति नहीं मालूम होती है कि इनकी कायिकी, वाचिकी, मानसिक सेवा दूध पर है कृष्ण से अधिक। तो भी चुके कृष्ण हमारे दूध से नहीं पालन पोषण उसका होगा, वो होगा किससे? गुरु दूध। इसलिए कृष्ण से भी अधिक प्रीति उनकी वस्तुओं पर होता है, ये भी प्रीति का एक लक्षण। इसलिए
तो ये तो अनुशीलन, ये जो
अनुशीलन तो होगा এখন দেখতে হবে যে সে ক্রিয়া তো একই রকমের কিন্তু অনুকূল ভাব কার মধ্যে বেশি, অনুকূল ভাব কিসমে অধিক হ্যাঁ यशोदा जी में है, न सखाओं में है, न गोपियों में है, किसमें अनुकूल भाव अधिक है ये दिखला रहे, दीजिए पत्नी में है न उनमें है, तो इसलिए यहाँ
मिला।
किंतु जो बलवान व्यक्ति होता है ना, अपने अधीन व्यक्ति को अपने अधीन रखता है ना? वैसे माधुर्य जो है वो बलवान है, उसमें कभी कभी ऐश्वर्य आ सकता है किंतु वो माधुर्य को ढक नहीं सकता। ऐश्वर्य मथुरा या द्वारका में भी है, वो माधुर्य को ढकेगा नहीं, वहां पर अपने आप माधुर्य कम प्रकाशित है। इसलिए मां विभो, मां एवं विभो, निशंसम पुरुषम निगमम न स पुनरावर्तते इति वेदवाक्यम। यदि कृष्ण को एक आदमी पा लेता है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस भगवान को या भगवत धाम को प्राप्त करके कोई वहां से लौटता नहीं है, उसको भगवान का परम धाम कहा। यदि कृष्ण को कोई पा लिया तो वहां से फिर लौटेगा नहीं। ये कहेंगे ये वेद की जो बात है निगमम, आप स्मरण कीजिए। तो क्यों हम क्यों स्मरण करें? अरे निगम तो आपका श्वास है, तो श्वास में उस व्यक्ति में कोई अंतर तो है नहीं, तो वेद ही तो आप ही हैं। इसलिए वेद की जो बातें हैं सब आप ही की बात है। इसलिए यदि उनके पास में कोई जाकर के नहीं लौटता है, तो हम साक्षात रूप में आपके पास में है तो हम कैसे लौट करके जाएं? यदि जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बातें व्यभिचारिणी हो गई, आपकी बातें ठीक नहीं है यदि हम लौट कर। इसलिए सत्यम कुरुष्व निगमम तवपादम, आपके चरण में हम आई हैं और फिर हम लौट जाएं अपने घरों में, यहाँ पर आग जल रही है, ये तो आपके बात के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए सत्यम कुरुष्व, आप सत्य कीजिए। ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य, गीता भी उपनिषद है इसलिए ये भी श्रुति है। गीता में भी कहते हैं जो लोग जैसा हमारा भजन करते हैं हम भी उसको उसी के अनुरूप में उतना ही कम या अधिक हम उसका भी भजन करते हैं। और आज समझ में, यदि कोई एक पैसा एनर्जी दे करके भगवान का भजन करे तो भगवान तौल करके उसी के अनुरूप उसको भी वो चीज देंगे। ये ऐसा नहीं हम भजन तो करते नहीं हैं और सब दे देंगे, ऐसा नहीं। जो जैसा हमारा प्रतिभाव है, जो प्रतिभाव से कर रही हैं, जो प्रियतम भाव से कर रही है, पुत्र भाव से कर रहा है, कोई सखा भाव से कर रहा है, कोई इनमें से कुछ नहीं होकर के तटस्थ भाव से ब्रह्म भाव जानकर के कृष्ण ब्रह्म है एक रूप से कर रहा है, कोई स्वर्ग के लिए कोई सांसारिक सुख के लिए उनसे कर रहा है, तो कृष्ण उनको वो सब चीजें दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं किस लिए? आपकी चरणों की सेवा करने के लिए, यज्ञ पत्नियां कह रही हैं। तो जब हम आई हैं तो आपको हमारे अनुरूप हमसे प्रेम करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो ये वेद विरुद्ध बात हो जाती है और वेद तो आप ही हैं, इसलिए आपकी बातें गलत हो जाएंगी। इति निर्गम रूपम स्ववाक्यानं च सत्यं कुरुष्व, इनकी बातों को आप सत्य कीजिए। भवती सब ननु, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है? भवती नाम विप्रजात्यभिमानु दुस्तज तत्प्रमा, अरे आप लोग तो ब्राह्मण पत्नियां हैं ना, ब्राह्मण की पत्नियां, जाति में ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण में देव हूं, इसलिए आप यदि उस रूप में आती हैं हमारे पास में ब्राह्मणी का अभिमान लेकर, तब तो आप लोग मन ही से हमारा भजन कीजिए और घर में लौट जाए। गोपी अभिमान से यदि आती तब तो हम लोग
समझ जाती हो।
इसलिए प्रीति बहुत कुछ निर्भर करती है संबंध पर। जिसका जैसा संबंध होता है, संबंध से एक अभिमान पैदा होता है। ब्रह्मा का कृष्ण के साथ में क्या संबंध है? अधिक से अधिक ममता रहित प्रभु सनक सनंदन सनातन जी का ये जो भगवान के प्रति भजन कुछ है, सनक सनंदन सनातन इत्यादि जो, इनमें ममता नहीं है, ये विभु वस्तु है। जहाँ विभु वस्तु का एकमात्र प्रभाव है वहां पर ममता नहीं होती। ममता कैसे होती है? तुम्हारे पिताजी कौन है? देखो ये संबंध है ना, ये अभिमान। इन लोगों में से किसी को पिता कहो, कहने से भी जो पिता के प्रति भाव है जन्म से, वो भाव ऐसे नहीं आएगा। इसलिए जो यशोदा माँ का जो पुत्र भाव है उनसे जन्मे हैं, ये एक प्रकार का। और जो वहां पर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं या स्त्रियां हैं जिनके गर्भ से नहीं निकले हैं किंतु कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक प्रीति करते हैं, ये बात्सल्य भाव है। किंतु यशोदा का जैसे गर्भ से निकल करके उनका ये संबंध है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी मैया, और लोगों के प्रति होगी। इसी को दिखलाने के लिए एक वर्ष के लिए उनके पुत्र और बछड़े। तभी जब कृष्ण का रूप वो खत्म हो गया तो वो भाव भी खत्म हो गया। तब उनको कहते हैं मदन मंद जनित है न? ये बहुत ही पीता है, देवता है ब्रज के, गोविंद जी कृष्ण मदन मोहन गोविंद जी और गोपीनाथ, एक ही व्यक्ति का तीन नाम है। बनवारी जी एक नाम और एक विशाखा के पिताजी और एक कुसुम के पति, तीन हो गए ना, एक ही व्यक्ति। ऐसे कृष्ण एक ही हैं। जब वो अपने रूप से, गुणों से, अपने भावों से लोगों के चित्त को आकर्षण करते हैं, कृष्ण धातु, कृष्ण माने आकर्षण, न माने होता है आनंद, आकर्षण करके आनंद देते हैं, संबंध स्थापन कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं कृष्ण अथवा मदन मोहन, मोहन करते हैं। किसी प्रकार से किसी के चित्त के आकृष्ट करने से संबंध होता है, ऐसे संबंध नहीं होगा। तो कृष्ण अपने गुणों से ऐसा आकर्षण कर लेते हैं, ये जीवों के चित्त को चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं, ये मदन मोहन। अभी चित्त चुराया है किंतु जब चित्त चुराने के बाद में उनकी सेवा आरंभ हो जाएगी तब उनको कहते हैं मदन गोविंद। जैसे वृंदावन में कृष्ण के बांसुरी बजाने पर कोटि कोटि गोपियां अलक्षित रूप में एक दूसरे से और वहां पर उपस्थित हुई, रास हुआ। रास माने क्या? सबसे श्रेष्ठ कृष्ण की लीला ये रास लीला था, जिसमें सभी प्रेम की जितनी भी लीलाएं हैं सब उसमें अंतर्भुक्त हैं, उसी के अंदर में है। इसे बढ़कर के और कोई लीला नहीं, जिसमें सबसे अधिक गोपियों का उपकर्ष दिखलाया गया, जो गोपियों से श्रेष्ठ और कृष्ण का कोई प्यारी नहीं या प्यारा नहीं, इस चीज को दिखलाया। अब जब उनकी सेवा आरंभ हुई तो उन्हीं का नाम हो गया गोविंद। और सेवा करने से कृष्ण का भी प्रेम इनको मिला, इनका भी प्रेम इन पर बढ़ा। जब प्रेम की अंतिम परिसमाप्ति एकदम अंतिम तो ये गोपीनाथ हो जाते, गोपियों के प्राण प्रिय हो जाते, उनका नाम तब होता है गोपीनाथ। गदाधर जी राधा है, ये गदाधर जी कौन है? स्वयं राधिका जी हैं। तो महाप्रभु जो राधिका भाव लेकर के आए तो फिर ये
बोला, इसी जगह बोला गुजरात राधा रानी को भाप गुड़ंग महाप्रभु ले आया तो राधा रानी को तब दक्षिण भाप पड़ा रहा ना तो गदाधर उसी दक्षिण भाप को लेके
आया। पुरुषोत्तम आश्रम पाठ में बोले थे
आया समझ में नहीं ना क्या
क्या कि महाप्रभु राधा का भाव लेकर आए थे फिर गदाधर पंडित क्यों आए राधा के रूप में।
ये तो कहा ना अभी बतलाया राधा जी प्रेम की अंतिम सीमा तक है कभी कभी मान करती हैं और कृष्ण उनको मनाते हैं तो इसको कहते हैं बाम्य भाव और दक्षिण भाव कहते हैं कृष्ण के सदा अनुकूल रह करके जैसा कहते हैं वैसे चल जो कुछ कृष्ण कहेंगे उसको मान करके वैसा ही चल उसमें मान कान नहीं है। यदि कृष्ण ने कभी कभी कृष्ण को कुछ बिगड़ भी गए तो ये रो देंगे बस और अभी कुछ नहीं था। जबकि राधिका जी में मान और दक्षिण दोनों भाव है परम सीमा तक तो उनका भाव ले लिया ना राधिका जी का अपना भाव है बाम्य भाव तो बाम्य भाव महाप्रभु जी ने ले लिया और गौरांग रूप में आए तो राधा जी में केवल बच रहा दक्षिण भाव। इसलिए गदाधर जी न तो बिगड़ते हैं न मान करते हैं न कुछ करते हैं किंतु है राधा जी है उनमें मानता प्रेम की अंतिम सीमा तक है किंतु प्रकाश नहीं कर रहे हैं। ये गदाधर पंडित जी क्यों नहीं प्रकाश करते इसलिए नहीं प्रकाश करते बाम भाव कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं इन्होंने हमारा भाव हमसे उधार लेकर के नहीं लेकर के मंगनी मांगा है और ले आए अब देखते कि हमारे भाव का व्यवहार ठीक से कर रहे हैं कि नहीं ये वाच कर रहे हैं उसको देख रहे हैं जैसे कहीं गड़बड़ ना करे यदि गड़बड़ करेंगे ना जैसे कि बरहा पीड़म श्लोक उच्चारण किया महाप्रभु घर में तो उनमें कुछ गड़बड़ी हुई भाव ऐसा नहीं आया तो भीतर से रोते हुए बरहा पीड़म ऐसे मधुर भाव से उच्चारण किया है जी महाप्रभु ने कहा जी घर में कौन है कौन रो रहा है और कौन उच्चारण कर रहा है अर्थात उनमें कमी हो गई उस भाव में क्योंकि कभी भाव प्रकाश वो नहीं करना चाहते थे राय रमानंद से मिलने के बाद में वो भाव प्रकाश करना था इसे प्रारंभ में कैसे करें तो उनकी त्रुटि इनसे देखा नहीं गया इसलिए उन्होंने इस भाव को प्रकाश किया जैसे नाम सुना है बैजू बावरा
तानसेन बिजू बावरा
तानसेन और बैजू बावरा ये दोनों शिष्य हैं इनके गुरु हैं कौन
हरिदास हरिदास
वृंदावन वाले हरिदास इतना सुंदर गाते थे सब लोग जब इन्हीं दोनों को इतना बड़ा ऊंचा समझते हैं तो और कुछ बात बैजू बावरा तानसेन से बहुत अधिक श्रेष्ठ था। एक समय की बात है बैजू बावरा इनके पास में आए और कीर्तन करना लगा दिल्ली की गलियों में उसमें कीर्तन करना मना था गान करना मना था कोई करेगा तो उसका प्राण ले लिया जाए तो या करके करने लगे तो लोगों ने निषेध किया निषेध किस लिए तो यदि आपको तानसेन हरा देगा तो आपका प्राण ले लेगा पर अच्छा उसे आने दो तो बादशाह ने इनको दरबार में बुलाया जहाँ पर तानसेन भी था उन्होंने कहा जे सब आप दोनों की बराबरी हो देखें जे कौन सुंदर संगीत करता है जो हार जाएगा यदि आप हार गए तो आपका प्राण लेना पड़ेगा और नहीं तो ये हार जाएंगे तो इनका प्राण हम ले लेंगे कहिए यहाँ नहीं आप निर्णय नहीं करेंगे कोई सभासद नहीं ये बन के जंगल के पशु पक्षी निर्णय करेंगे वहाँ पर होगा वह सब लोगों को लेकर के और वन में गए और वहाँ पर तानसेन से कहा जैसे गाओ उसने गाया और इसके बाद में इन्होंने वीणा लेकर के जब गाना आरंभ किया तो हिरणियाँ सब छुप करके वहाँ पर चली आई और पशु पक्षी आ गए उन्होंने अपने गले की माला लेकर के और उसके गले में डाल दिया हिरणी के इसके बाद गान समाप्त कर दिया तो वो चली गई उन्होंने कहा जी उन हिरणियों को बुला करके और उनका माला हमारा लौटा करके दे दो तो तुम हमसे श्रेष्ठ हो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया उन्होंने कहा जी तो अपने स्वभाव से आ गई थी नहीं आई फिर उन्होंने पीना लिया और फिर वो बजाया। ऐसे ये ऐसी भावना है ना। एक दिन अकबर बादशाह इनके पास में गया तानसेन को लेकर के कुछ सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपना संगीत भगवान को सुनाते हैं और कोई सुने है। इन दोनों के गुरु। उन्होंने कहा जिसे बादशाह आया है और इनको गान नहीं सुनाया गया। तो दूसरे दिन वो अकेले आकर के एक राग रागनी बीना पर लेकर के बजाने लगे, किंतु उसमें वो भाव नहीं आया जो आना चाहिए। बस उसके हाथ से कहा इतना दिन तुमको पढ़ाया और ये किया, तुमको ये ज्ञान नहीं, ठीक से बजा नहीं सकते और गा नहीं सकते। बस बिना लेकर के और सब ऐसा सुंदर गान किया जो बरसा हो गया, जिसको मल्लार राग कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि उन्होंने एक गलती कर करके जानबूझ करके हो या जैसे गलती हुई तो उन्होंने अपने विद्या का पूरा प्रयोग कर लिया। ऐसे ही इसकी उपमा दे रहा था, किस चीज की बतला रहा
था।
वही गदाधर पंडित जी वहाँ पर हैं। उन्होंने एक दिन कहा